نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں ملنے کا بیٹھنے کا موقع دیا. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت اور میت کے مسائل, اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس موضوع کو سننے کا موقع دیا. ہم آج اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے پیاروں کے لیے اس بات کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا کوئی غم نہ دکھائے, لیکن حقیقت ہے کہ جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے اس طرح موت بھی ایک حقیقت ہے. تو آج ہم اس ٹاپک کو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کریں گے. کتاب الجنائز کا مطلب کیا ہے؟ کہ جنازے کے وہ مسائل جو حدیث کی مختلف کتابوں سے ملتے ہیں, اور الحمدللہ تفہیم السنہ سیریز میں اس کو پائل اپ کیا گیا. اس وقت بس ہم سب نے اس بات کو سنتے وقت یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی موت کے لیے کتنی تیار ہوں. حقیقت یہ کہ موت بہت بڑی حقیقت ہے. جس طرح زندگی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس طرح موت کا انکار نہیں کرتا. اگر آپ غور سے سوچیں, دنیا میں ہر موضوع پہ اختلاف موجود ہے. نماز پہ اختلاف, ہاتھ باندھنے پہ اختلاف, سجدہ رکوع قیام پہ اختلاف, عید کب ہوگی, آلموسٹ ایوری تھنگ پہ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ کچھ کہتے ہیں. مسلم نان مسلم میں عقیدے کا اختلاف ہے, کوئی اللہ کہتا ہے کوئی بھگوان, لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں, سب اس کو مانتے ہیں, اور دیٹ از موت. کافر, مومن, فاجر, ایتھیسٹ, ایگنوسٹک, دہریہ, ہندو, یہودی, مسلم, سب موت کو مانتے ہیں. لیکن موت ہے کیا؟ اس دنیا سے ایک دوسری دنیا جانے کا نام ہے. یاد رکھیے کہ موت فنا نہیں ہے, یعنی موت کسی چیز کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک اے ٹرانسفر. جیسے آپ اس گھر سے اٹھ کے اس سے ایک بہت بڑے گھر میں چلی جاتی ہیں. آپ اس کو بس ایک سمپل سی مثال سے لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم احادیث کو فالو کریں گے. آپ دیکھیے کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا. اس دور میں بچے کو شعور ہو, اور اس وقت کے حساب سے تو ہوتا ہی تھا, اب نہیں یاد ہمیں, یہ اور بات ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کو کوئی پوچھے کہ بتاؤ کہ دنیا کیا ہے, تو وہ کہے گا ایک یا دو فٹ جگہ چکور, وہاں کیا ہے, بلڈ ہے, پانی ہے, سافٹ ٹیشوز ہیں. امیجینیشن میں لائیے کہ اس پیٹ میں دو بچے ہوں, لیٹس سی جیسے ٹوینس میں ہوتا ہے, تو اس کو اپنا وہ ٹوین بردر یا سسٹر جب وہ اپنے رشتہ دار لگیں گے. اب 9 مہینے ساتھ رہنے کے بعد ان میں سے ایک بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے اور دوسرا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے. اگر اس وقت کوئی اس دوسرے بچے سے پوچھے سناؤ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو کہے گا افسوس میرا بھائی آج فوت ہو گیا. وائے؟ کہ پچھلے 9 مہینے سے میں اس کو دیکھ رہا تھا, وہ میرے ساتھ تھا, لیکن آج وہ یہاں سے پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ فوت نہیں ہو رہا, وہ بس اس چھوٹی سی پیٹ کی دنیا سے نکل کر ایک اس بڑی دنیا میں آ رہا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے وہاں پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, نیاگرا فال ہے, تو نہیں مانے گا نا, ایسی ہے نا. بس دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. جب ماں کے پیٹ سے ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں اس دنیا کی چیزیں نہیں پتا تھی نا. کوئی پوچھے کہ یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا, سورج نکلے گا, چاند نکلے گا, اپنے وقت پہ رات ہو جائے گی, صبح ہوگی, تو ان بلیویبل لگتا ہے نا, کیونکہ ماں کے پیٹ میں تو اس کو رات دن کا کوئی فرق نہیں لگتا. بس جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا, اب آپ اس دنیا کو سمجھیے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑی قبر ہے. ہم سب اس دنیا میں آئے اور ہمارا یہاں دل لگ گیا, یہاں کے رشتے, یہاں کی چیزیں ہمارے سامنے تھیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں کچھ سال گزار کر اس دنیا سے اگلی دنیا میں جاتے ہیں, تو دس از ریپیٹیشن آف دا سیم ڈیلیوری. اس دنیا سے ہم موو ہو رہے ہوتے ہیں, یہاں کی چیزوں سے ہمارا تعلق ٹوٹ رہا ہوتا ہے, یہاں کے رشتے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. یہاں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا باپ فوت ہو گیا, بیوی کا شوہر چلا گیا, بہن کی بہن چلی گئی, لیکن ایک دوسری دنیا جو اس دنیا سے بہت بڑی اس آنے والے انسان کا انتظار کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ایگزامپل کے بعد تھوڑا سا موت کا خوف کم ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ہم کسی کو کفن میں لپٹے ہوئے اور زمین کے گھڑے میں بند کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے. کسی نان مسلم کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا کہ اسلام نے تو موت کو بھی خوبصورت کر دیا. آپ کو پتا کہ نان مسلم آخری عمر میں ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ خاص طور پہ ناروے میں تو یہ بڑا معروف ہے, इसलिए कि अब उनके आगे कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ डेड एंड। लिहाजा ऐसे लोग जो डेड एंड पे हैं उनको तो वाकई खौल ही उठेंगे ना कि अब किया तो क्या किया, लेकिन मुसलमान कहते नो प्रॉब्लम, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के और उसी की तरफ पलट रहे हैं। या ये तो हन नफ्सुल मुतमईन इरजीला रब्बी की रातियत मर्दिया, क्या इत्मीनान वाली रूह चल इस जिस्म से निकल और अपने रब की तरफ चल। तो आइए ज़रा देखते हैं कि अहादीस में मौत और उससे मुतल्लिक चीज़ों को क्या कहा गया। हर चीज़ को मैं एक मसला या एक हेडिंग की सूरत में आपके सामने बोलकर फिर उसकी इंशाल्लाह दलील या उसका रेफरेंस उसकी हदीस दूंगी, आप जो नोट कर सके करें, लेकिन यह है कि इस वक्त वाकई हम सब डूब के सुने। हर दूसरी चीज़ जो इस बात को सुनने से हमें रोक रही है, इस वक्त हम उसको हटा दें। ये हमारा इम्तिहान है, ये इबादत है। इल्म की महफिल इतनी साइलेंट और इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि फरिश्ते वहाँ उतरते हुए महसूस हों। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम इस मौजू का हक अदा करें। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मौत और मैयत के मसाइल में नज़र आती है वो क्या है कि अल्लाह ताला से मुलाकात की ख्वाहिश रखनी चाहिए। बाज़ वही क्वेश्चन होता है कि क्या मौत आनी चाहिए या मौत से मोहब्बत करें क्या। तो हदीस का मसला क्या है कि अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश हो। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को महबूब रखता है, अल्लाह ताला इससे मुलाकात को महबूब रखता है। यानी अल्लाह ताला लव्स टू मीट हिम। ज़रा सोचिए इस जुमले को बोलते हुए भी कैसा लग रहा है। हम लंदन में, मैनचेस्टर में, नॉर्वे में, अमेरिका में, चाइना में, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, हमें कौन याद आते हैं? हमें अपने मुल्क वाले याद आते हैं, माँ बाप याद आते हैं, भाई बहन याद आते हैं। फिर जब एक साल कुछ वक्त गुजर जाता है तो हमारा दिल चाहता है कि अब हम मिलें। कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो पीछे घरों में तो कहते हैं उसको देखें। हाँ, तो ये जो मोहब्बत जो खिंच होती है, जो हमें फिर इतने हज़ारों डॉलर लगवा कर उन मुल्कों में ले जाती है, फिर हम वहाँ जा के खुश होते हैं, तो आप इसको इमेजिन कीजिए बिल्कुल एक ज़िंदा हस्ती अल हय्युल क़य्यूम के साथ। क्या हकीकत में मैं जिस तरह अपने माँ बाप को मिलना चाहती हूँ, मेरे दिल में अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश है? देखिए, जिससे अच्छा ताल्लुक़ होता है ना, उससे मिलने को दिल जाता है। जिसके कहने पे अमल किया हो ना, उसको मिलने को दिल जाता है। अगर रिजवाना ने नसरीन को कोई काम कहा होता और नसरीन वो काम कर चुकी हैं, तो आज ये मिलने को बेचैन होंगी कि मैं रिजवाना जी को कह दूँ कि हाँ जी, मैंने आपका काम कर दिया। बिलफर्ज इसकी बात को अपोजिट कर लीजिए कि इन्होंने कोई काम कहा, ये कर ना सकी, भूल गई, सुस्ती की, केयर ना की, और आज इनको पता होता कि यहाँ रिजवाना आ रही है तो इनके दिल का क्या हाल होना था। तो उसमें होता क्या है कि फिर ये अवॉइड करती। और बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि ऐसी जगहों पे फिर लोग सिर्फ इस वजह से नहीं जाते, फलां से सामना नहीं होगा, सामना करना पड़ेगा। कोई क्लासेस में लोग आते हैं, आते आते छोड़ देते हैं। फिर किसी आम पार्टी दावत में भी जब बुलाए जाते हैं तो नहीं आते मोस्टली, जो मैंने देखा है, इल्ला माशाल्लाह। और उसमें दिल में खौफ क्या होता है कि शायद हमें मजबूर करेंगे या हमें रिग्रेट फील होगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, जिसको रोज़ देख के खुशी होती है उसको कभी कभी देख कर तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन हकीकत है कि हम उन लोगों को फेस नहीं करना चाहते जिनको हमने खुश नहीं किया होता, या कम अज़ कम कोई गिल्ट है। सेम यही चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि अल्लाह ताला से मुलाकात उस बंदे को महबूब होगी जिसने अल्लाह सुब्हान तआला के डूज़ एंड डोंट्स पे अमल किया होगा, जिसकी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चली होगी। और फिर आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मिलने को नापसंद करते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। यानी द स्ट्रॉन्गेस्ट नरेशन इन दी हदीस चेन कौन सी होती है, जिसको मुत्तफिक अलैह कहते हैं, कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इसको अपनी किताब में रखा। तो हम इस बात को सुनकर अपने लिए क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह इस ज़िंदगी में वो सब कुछ करने की तौफीक दे कि जो मुझे तेरी मुलाकात के करीब कर दे। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने एक जो दुआ सिखाई थी ना अल्लाह की मोहब्बत मांगने की, कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक व हुब्ब अहब्ब इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिम्मा अल्वारिद। कि अल्लाह, मैं तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ, और उस शख्स की मोहब्बत जो मुझे तेरी मोहब्बत दे। कुछ लोग होते हैं ना, जिनसे मिलें तो अल्लाह से प्यार होने लगता है, और मुझे उन कामों की मोहब्बत दे जो तेरी मोहब्बत को करीब करें। अब आप बताइए कि अल्लाह गलत कामों से तो नहीं खुश होगा? तो गोया कि इस दुआ में हम उन तमाम चीज़ों को मांग रहे हैं जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान को मिलती है, और फिर इस रब्त नफ्स से अपनी जान ठंडे पानी से ज़्यादा हम अल्लाह की मोहब्बत मांगते हैं। तो हम सब इस वक्त दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें अच्छी अच्छी ज़िंदगी बसर करने वाला बना, ताकि कल तेरे पास आए तो तू खुश हो जाए। ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा बना दे कि कल जब मैं तेरे सामने आऊँ तो तू मुझे देखकर खुश हो जाए। नबी सल्लम की बहुत प्यारी दुआएं इस मौजू पे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका लज्जत नजरी इला वजही का व शौक इला लिकाई का। ऐ अल्लाह मैं तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का सवाल करती हूँ। इमेजिन कीजिए, 10 साल बाद बेटी माँ को मिलती है, उस वक़्त कैफियत क्या होती है? परदेश में बच्चा गया और 10 साल बाद आया तो माँ उसको सीने से लगाते हुए क्या महसूस करती है? ये है लज्जत। मोमिन की रूह दुनिया में बेचैन रहती है क्योंकि उसको अपने रब से मिलना है। ये एक अलग मौजू है, इस पर बहुत बात की हुई हमने, लेकिन याद रखिए कि हमारी रूहें बेचैन है अल्लाह को मिलने के लिए। ये जिस्मों के पिंजरों में अगर ना बांधी होती ना, आपको था कि 360 जोड़ हैं जिस्म के, और हर जोड़ में रूह कैसे है? मैं इसको एक मिसाल से समझाती होती हूँ कि चुटिया, आप चुटिया को जो बुनते हैं, और अगर कभी चुटिया में थोड़ा सा आटा लग जाए, गम लग जाए, तो आप उस जगह को खींचते ना, पूरी चुटिया खिंच जाती है। हमारी रूह गुंदी हुई है, खुली होती तो पता नहीं कब की भाग गई होती मोमिन की रूह। ये क्यों भाग भाग के जाते हैं कि शहादत है मतलूब और मकसूद है मोमिन, उनको अल्लाह से मिलने का शौक होता है। और काफिर की रूह जिसम में छुपती है मौत के वक्त भी, बड़े बड़े गुर्ज और हथौड़े मार मार के उसको निकाला जाता है। आगे हम सुनेंगे हदीसें। तो क्या पता चला? अच्छे काम कीजिए, देन लेट इट गो, डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र नहीं होगा। हदीस में तो दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना, वो मोमिन की मौत है। द मोस्ट डिलीशियस एंड इंजॉयबल एंड जॉयस थिंग इन द वर्ल्ड इज मोमिन की मौत। उछलती हुई रूह निकलती है उसकी रूह जिस्म से, इस तरह उछलती है कि जैसे चल रही हूँ मैं अपने रब की तरफ। कभी खुशबू की शीशी आप खुली छोड़ दें तो थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो बॉटल खाली होगी। इस तरह मोमिन का बुत जिस्म का नीचे रह जाता है और उसकी रूह मस्तियां करती हुई ऊपर चली जाती है। तो अल्लाह हमें ये मुलाकात अता फरमाए। फिर अगली चीज़ याद रखिए कि मौत से नफरत नहीं करनी चाहिए। अब हम सारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है मौत की सूरत में, खुदकुशी की भी बात हम पढ़ेंगे। तो मौत से बजाते खुद नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी दलील नोट कीजिएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है हज़रत महमूद बिन लबीद से, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो चीज़ों को आदमी नापसंद करता है, कौन सी? पहली चीज़ है मौत, हालांकि मौत मोमिन के लिए फितनों के मुकाबले में बेहतर है। सोचिए ज़रा, यानी दुनिया में बाज़ दफ़ा ऐसे फितने आ जाते हैं कि ईमान नहीं बचता। तो मोमिन क्या चाहता है कि मैं दुनिया से चला जाऊँ, यानी बाज़ दफ़ा दुनिया में रहने से दुनिया से जाना बेहतर होता है। लेकिन हकीकत यह है कि आपने फरमाया, एक वक्त आएगा कि दुनिया में इतने फितने होंगे कि जब इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा, उसके पास से यानी गुजरेगा, तो कहेगा कि काश मैं ज़मीन की छाती की बजाय ज़मीन के पेट में होता, यानी आई विल बी बीनीथ द अर्थ, मैं अंदर चला जाता। और आज आपको वो असरात नहीं दिख रहे? आज जब आप सच्चा ईमान बचाते हुए दुनिया में जीना चाहते हैं तो आपको समटाइम इम्पॉसिबल लगता है। सूद से आप नहीं बच सकते, गलत चीज़ों से आप नहीं बच सकते, जिना बदकारियों से बचाना अपने आप को मुहाल है। तो बाज़ दफ़ा दुनिया के फितनों से मौत अच्छी होती है। और दूसरी चीज़ जिसको इंसान डिसलाइक करता है वो माल की कमी है। हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हमारा माल कम हो या जो है वो कम हो जाए। फरमाए, हालांकि माल की कमी क़यामत के रोज़ आसान हिसाब का ज़रिया बनेगी। सोचिए, आज दुनिया में बहुत थोड़े हैं ऐसे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब से मैं ऐसे चंद लोगों को जानती हूँ कि जिनको माल से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, इवन बेसिक्स की भी फिक्र नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि कल क़यामत के दिन क्या होगा। आसान हिसाब, आप इस हदीस को इस तरह एंजॉय कर लीजिए कि आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, दो लगेज की तो आपको गुंजाइश थी ही, 40-40 किलो के कह लीजिए। आप बहुत देर बाद गए और आपने बहुत सारी शॉपिंग कर ली हुई थी, तो आप एक आधा एक्स्ट्रा भी ले लिया, हैंड कैरी भी आपने कुछ ना कुछ पकड़ लिए। अब आप इतने सामान से लदे फदे एक लाइन में खड़े हैं, और वहाँ वो कभी तोल रहे हैं, कभी गिन रहे हैं, कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी कुछ, और ये निकालो वो करो, और एक हशर का सामान बरपा। उस वक़्त एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगती अपनी, दिल करता है ये सब फेंके और खाली हाथ जाए। इतने में आप दूर से एक आते हुए शख्स को देखते हैं, हाथ में हैंड कैरी है या एक ब्रीफ केस है, टिप टिप करता हुआ आता है, बोर्डिंग पास लिया और बगैर लगेज के आगे चला गया, आपसे बाद आया, आपसे पहले चला गया। क्या फील होता है? ये होगा क़यामत के दिन थोड़े पैसे वालों के साथ। हदीस में आता है कि गरीब गुरबा जन्नत में 500 साल पहले दाखिल हो जाएंगे अमीरों की निस्बत। यानी दो लोग अगर हों, इकट्ठे मुसलमान हुए या एक ही दिन से पैदा हुए, एक जितनी नमाजें पढ़ी, एक जितने रोजे, यानी एवरी थिंग इज इक्वल इन डीड्स, बट एक के पास दौलत ज्यादा थी, एक के पास कम, तो जिस पे पास कम थी वो दूसरे से पहले चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह हमें माल जो है वो ज़ाया कर दे, हम ये चाहेंगे कि अल्लाह जो हमारा माल है उसको अपने रस्तों में लगा ले। देखिए माल बुरा नहीं है, माल मांग सकते हैं, सहाबा कराम ने मेहनतें की, तिजारतें की, कारोबार किए, नबियों ने किए, मोमिन के हाथ में माल रुकता नहीं है, सिंपल सी बात है। बस कमा सकते हैं जितना मर्जी कमाएं अगर हलाल से। हाँ, कमाने में ये नहीं करना चाहिए ब्रदर्स को कि नमाजें छोड़ दें, जुमे का वक्त है और आप जॉब पे बैठे हुए, ये तो फिर नजायज़ बात हो गई। हलाल से मिले, मेहनत से मिले, बेस्ट थिंग है। नबी सल्लम ने एक सहाबी को कुछ देना चाहा तो उसने कहा, अल्लाह के नबी मुझे माल की ज़रूरत नहीं है, तो आपने फरमाया कि पाकीज़ा माल अच्छा है नेक तबीयत वाले शख्स के लिए। यानी अगर आपकी बाय नेचर आप बहुत अच्छे हैं, जेनरस भी हैं, दूसरों को भी खिलाते पिलाते हैं, अल्लाह के रस्तों में भी लगाते हैं, तो इट्स वेरी गुड। लेकिन जब बुरे हाथों में, बखील के हाथ में माल आता है तो ये ख़राब है। मैं इसको एक छोटी सी मिसाल देकर आगे चलती हूँ। जैसे आप देखिए कि हमारे घरों में पानी होता है ना, तो टैप वाटर्स में, सिंक में हम पानी खोलते हैं तो पानी चलता जाता है। अब आप देखिए कि वो पानी जो आपकी टूटी से निकला, उसने आपका बर्तन धोया, फिर आपके सिंक की पाइप से गटर में चला गया, इससे एक्सीलेंट कोई चीज़ है? एक दिन पानी ना आए घर में तो हालात क्या होते हैं, बदबू भी होगी, गंदगी भी होगी। लेकिन अब हो क्या कि पानी ऊपर से तो टैप से आ रहा है, लेकिन नीचे क्लॉग हो गया, सिंक में फंस गया, और वो सब गंदा पानी, बर्तन और वो सारे ऊपर आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये पानी जहमत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि नीचे से इसको खोलो, कुछ फंस गया उसको निकालो, ड्रेन ओपनर डालो। बस पानी इज माल। ऊपर से साफ पानी आ रहा है, गंदगियां धो रहा है, सफाइयां कर रहा है, बर्तन धो रहा है, नीचे से निकलता जाए, ये वो माल है। अल्लाह हलाल माल दे रहा है, ये दुनिया की ज़रूरतें हैं, ये गंदे बर्तन है दुनिया, ये कपड़े हैं, ये हमारी क्लीनिंग है, करते जाए, इसे साफ करें, बस रोकें ना। आपको अल्लाह कफायत के साथ इस्तेमाल करने वाला बना दे। हाँ, ज़ाया नहीं करना, टूटी खोल के आप भूल जाए और हंडिया पकाने लग जाए और पानी ज़ाया हो रहा है, इसका हिसाब होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ठीक है, तो बस बात समझ आ गई। और जहाँ क्लॉगिंग हो जाती है, जहाँ ड्रेन बंद होते हैं, ये वो शख्स है जिसको माल तो तैयब मिला लेकिन वो दुनिया में खो गया। और आप देखिए कि वो और भी गंदगी का सबब होता है। बहरहाल, अगली चीज़ क्या है कि मौत की आरजू करना नाजायज़ है। यानी इट्स नॉट द रिकमेंडेड, इट्स नॉट मुस्तहब और पसंदीदा कि इंसान ये कहे कि मुझे मौत आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, अगर कोई नेक आदमी है, यानी क्यों ना करें? अभी तो हमने सुना कि अल्लाह से मिलना है, तो कहा कोई बात नहीं, अगर वो शख्स नेक है और ज़िंदा रहेगा तो अपनी नेकियों में इजाफा करेगा, तो क्यों कम करें? और गुनाहगार है तो वो क्यों ना मौत की तमन्ना ना करे कि मुमकिन है कि वो अल्लाह से माफ़ी मांग कर अच्छे काम करने लग जाए। बुखारी की रिवायत है, तो मौत की तमन्ना कभी ना करें। बस सफ़ा हम अपनी तो नहीं कभी करते, बुज़ुर्गों की करने लग जाते हैं, बीमारों की करने लग जाते हैं, अल्लाह अम्मा पे अब रहम करे, अल्लाह अब इनको पर्दे में रख ले। नेवर विल डू दिस। 10 साल से भी आप किसी को बिस्तर पे कोमे में देख रहे हैं और इवन उसकी बॉडी की गंदगी भी कोई दूसरा धोता है, फिर भी ये ना कहें कि अल्लाह इनको मार दे, क्यों? इसको समझ लीजिए। आप देखिए कि अल्लाह ताला का एक बड़ा खूबसूरत सा असूल है कि दुनिया में ही मोमिन को पाक कर देता है। हम सब जो गुनाह करते हैं ना, बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह ताला के हुक्म से वैसे ही माफ़ हो जाते हैं, जैसे जिस्म से बाल झड़ते रहते हैं, पलके गिरती हैं, स्किन से कुछ ना कुछ छाल उतरती रहती है, बहुत सारे गुनाह तो हमारे ऐसे ही ढल जाते हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। फिर उसके बाद सेकंड लेवल क्या होता है कि जब हम नेकियां करते हैं ना, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, तो उन नेकियों की वजह से कफ़ारे बन जाते हैं हमारे गुनाहों के, जैसे एक नमाज से दूसरी नमाज, रमज़ान से रमज़ान, और लाइक दिस. बहुत लॉन्ग हदीस है, लेकिन मैंने इसको एक टॉपिक में गुनाहों के असरात में बहुत डिटेल से हमने देखा था कि हमारे सब गुनाह किस किस स्टेप पे फौत ख़त्म होते हैं दुनिया में. फिर उसके बाद मुश्किल आती हैं, थर्ड लेवल ये होता है, उसके ज़रिए अल्लाह गुनाह माफ़ करते हैं. हत्ता के बिस्तरे मर्ग पे जो तकलीफ़ें आती हैं या मौत की सख्ती हैं, इस पे भी गुनाह झड़ते हैं. अब होता क्या है, मोमिन के लिए अल्लाह ताला का कानून क्या है? एक सिंपल सा अल्लाह का रूल याद रख लीजिए कि बंदा है मोमिन को अल्लाह ने इस दुनिया से किस हालत में लेके जाना है, जिस हालत में वो दुनिया में आया था, मासूम, कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, पहली दफ़ा जैसे है, प्योर फितरत पे, इनोसेंस. अब अल्लाह ताला भी देखते हैं, फरिश्ते भी देखते हैं कि हमने तो गुनाह कर करके अपने आप को बहुत आलूदा किया हुआ है, डर्टी किया हुआ है, तो फिर अल्लाह तकलीफें डालते हैं. ठीक है, काफिर के मामले में अल्लाह का रूल डिफरेंट हो सकता है. जिस दिल में खैर नहीं होती, कट से अचानक मौत उसको वहां जाके पकड़ेगा, कब्र से, हशर में, और फिर बिलाखिर पुल सरात और जहन्नुम में डाल के. तो लिहाजा अगर आज दुनिया में कोई तकलीफ में है, तो आप ये सोचिए कि अगर इस तकलीफ को कब्र में जाके माफ कराया जाता उस गुनाह को, तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते थे? नहीं कर सकते. हाँ, एक सूरत है मौत की आरजू करने की, और वो कौन सी है? जब शदीद तकलीफ हो, इतनी तकलीफ हो कि बंदे को अपने ईमान के जाने का खतरा हो, लाइक मीन को खुदकुशी कर ले. इसके बारे में हदीस सुनिएगा, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, बुखारी की ये रिवायत है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी आदमी तकलीफ या मुसीबत की वजह से मौत की आरजू ना करे, और अगर कोई चारा नजर ना आए, यानी कोई जीने का सामान नहीं, यानी कोई लड़की है उसकी इज्जत पे हमला है, अगर वो जिंदा रहती है तो कोई उसकी इज्जत लूट लेता है, या किसी को कोई ऐसे गुनाह पे माइल कर देता है, या कोई ऐसे हालात हो जाते हैं कि एक लड़की किसी ऐसी जगह फंस जाती है कि जहां दूसरे बहुत सारे उसके लिए फितने हो सकते हैं, तो क्या कहे? उस पर अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई, मैं बोलती हूँ, आप में से जो भी मेरे साथ दोहराना चाहें. बेसिकली ये वो दुआ है कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार है, तो वो क्या दुआ मांगे? अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल्ली वतवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल्ली. इसका तर्जमा क्या है कि या अल्लाह, मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरे जिंदा रहने में भलाई है, और मुझे उस वक्त वफ़ात दे दे जब वफ़ात मेरे लिए बेहतर हो, यानी उसमें मेरे लिए भलाई हो. आप देखिए, ये भी तो एक इस्लाम का खूबसूरत कानून है ना, कि जीने का भी तरीका सिखाता है और मरने की बात सिखाता है. वो एक शेर भी है ना, आज तो किसी दुख की वजह से इंसान मौत मांगता है, लेकिन मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे. तो लिहाजा आम हालात में, किसी डिप्रेशन, किसी मुश्किल के वक्त में अपनी मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए. ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि हम अल्लाह से कैसी मौत मांगें? तो शहादत की मौत के लिए आरजू करना और दुआ करना मसनून है. शहादत की कैसे? रिवायत सुनिएगा, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है. ये कितना प्यारा अंदाज़ है, अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम ऐसे खाते थे, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है. ये सुनते भी तो एहसास होता है ना कि मैं ना जीने पर कादिर हूँ ना मैं मरने पर कादिर हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ. यानी सेम बात आपने 3-4 दफ़ा दोहराई. ये सही बुखारी की रिवायत है. तो क्या पता चला कि शहादत की मौत मांगनी चाहिए. हदीस में क्या आता है आपको पता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो ये हमने सुनी ली. आप कुरान पढ़ के देखिए, सूरत आले इमरान में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, सूरत बकरा में आ सकते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए, ला तकुलू, ना तुम उनको कहो कि वो मुर्दा है. तो शहीद को तो अल्लाह बहुत खूबसूरत सबक देता है ना, तो हम सब भी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने रास्ते में लगा. अच्छा, आज तो मुझे लगता है कि जिहाद का लफ्ज़ और टेररिस्ट होने का इल्ज़ाम इतना दिमागों पे छा गया कि लोग अब शहादत या जिहाद की बात भी नहीं करते, दुआ भी नहीं करते. हालांकि आप कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक दुआ मांगा करते थे. मैं बोलती हूँ, आप भी मेरे साथ मांगिए, और जब भी अब मदीना जाऊँ तो मुझे ये दुआ ज़रूर याद आती है, पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मर्ज़ुक़नी शहादतन फी बलदी रसूली का। ये बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह मैं तेरे रसूल के शहर में शहादत की मौत मांगता हूँ। अब आप सोचिए, रसूल का शहर मदीना और शहादत की मौत, कितनी अजीब बात है। और ये बात सुनी तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे शेयर करूँ। एक बहुत अच्छे आलिम थे, स्कॉलर अल्लामा एहसान अली ज़हीर, आपने शायद उनका नाम सुना हो। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनके बारे में आता है कि वो हमेशा ये दुआ मांगते थे। तो जो उनकी बहनें और घर वाले थे वो मजाक करते थे कि अबू या भाई, आप एक तो कह रहे हैं कि मुझे मदीना में मौत है और साथ अब शहादत की मौत मांगते हैं, जबकि मक्का मदीना में तो जंग के कोई इम्कान भी नहीं है। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ ख्याल क्या आता है कि शहादत जो होती है वो मैदान जंग में लड़ने का नाम है। तो हुआ क्या, वो लाहौर शहर में अपना जो उनका काम था दरसो तदरीस, उसी में मसरूफ थे। एक बहुत बड़ा जलसा था और उसमें उन्होंने स्पीच दी और उनकी ज़ुबान पे वही शेर था, गालिबन शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, मेरा ख्याल है यही शेर था या कुछ और है। आप उनका क्लिप ऑनलाइन से सुन भी सकते हैं। आखिरी बिल्कुल मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, वही शेर था। तो उस पे थे और किसी ने उनको फूल भेज की और फूलों के बहाने उसमें बम था, बम फटा और वो जख्मी हुए, उनकी टांग जो थी वो जख्मी हुई। अब सारी ज़िंदगी सऊदी अरब से और वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। सऊदी हुकूमत ने उस वक्त, हमें खुद याद है, हमारी फैमिली के थे माशाल्लाह, मेरे भाभी के अबू भी हैं वो, तो उस वक्त सऊदी हुकूमत ने उनके लिए तैयारा भेजा कि आप इनको इलाज के लिए इधर बुलाएं। एक रात से लाहौर में रहे हैं सब खानदान में, बिल्कुल जाहिर है कि आप सोच सकते हैं क्या हालात होंगे। और उस वक्त जब जहाज़ में उनको बिठाया, टांग तकलीफ थी, जो कुछ था, कोई कह रहा भेजो, कोई कहता कुछ नहीं, लेकिन हुकूमत ने कहा कि हम इनका इलाज करेंगे। जहाज़ में गए, मदीना में उतरे, जूँ ही वहाँ उनके हॉस्पिटल में गए, दम दे दिए, शहादत भी मिल गई। अल्लाह के दीन की गवाहियां देते हुए, शहादत हक की गवाहियां देते हुए जो ज़िंदगी बसर करेगा, यकीन कीजिए कि बिस्तर पे भी मरेगा तो शहादत है। आज हम अगर ये दुआ करते हैं ना कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, तो अपनी ज़िंदगी शहादत हक की बनाए हम, और शहादत हक के अल्लाह के बंदों को जहन्नम से बचाने की कोशिश। कुन तुम खैरा उम्मत नुखरिजत लिन्नास का काम करने की, आपको नहीं पता ये कितना बड़ा काम है। अगर आज चंद लोग ये काम कर रहे हैं तो खुश हुआ करें उनको देखकर, क्योंकि आज हम उम्मते मुस्लिमा की बका, हमारी ज़िंदगी, जिसको आप कह सकते हैं कि उम्मते मुस्लिमा की ऑक्सीजन दावत और तबलीग है, इबलाग। कुन तुम खैरा उम्मते नुखरिजत लिन्नास, आज उम्मत इसको भूलने की सजा भुगत रही है। ये जगह जगह जो मुसलमान कट मर रहे हैं, सारी दुनिया के मुसलमानों पर ऐसे लगता है कि कर्बलाहट है। क्या ये वो बनी इसराइल वाली बातें नहीं दिखती जो कुरान पढ़ने वालों को दिखती हैं, कि वह बाव भी गदब नला गदब, इधर से मारे इधर पिटे, उसने मारा उधर गया, हर गोली मुसलमान के नाम पे, हर इल्ज़ाम मुसलमान के नाम पे। तो लिहाजा हम सब इस वक्त दुआ करें, अल्लाह मेरी ज़िंदगी के अब जितने दिन रह गए हैं तो मुझे किसी काम का बना। कुरान का सीखना सिखाना इस शहादत हक के लिए तैयारी है। वो दर्द आ जाता है कि क्या ज़िंदगी ज़ाया की मैंने, खाया पिया, घर साफ किए, सजाए, कपड़े पहने, शादियां मंगनियां, दैट्स इट। आज मैं मरूं तो मेरे हाथ में क्या, मैं अपने ऊपर लेके कहती हूँ, आज मैं मरूं तो कल मेरे हाथ में क्या, कोई चीज़ मेरे साथ जाएगी? मैंने इतना वक्त ज़ाया कर दिया, मेरी ज़िंदगी किधर गई? मेरे साथ वो जाएगा जो मैंने अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश की होगी। आज आप पढ़ रहे हैं 2, 4, 6 साल के अल्लाह के हुक्म से हमारा पूरा, यानी हमारा जब भी कहती हूँ तो असल में एक प्लेटफॉर्म है जिसको सिर्फ प्लेटफॉर्म हम समझते हैं, और नूरुल कुरान है। कुरान के नूर को हर घर हर दिल में बसाने की नीयत है, और उसके लिए इतना सिंपल प्लेन तरीक़ाकार है, मेथडोलॉजी ये है कि थोड़ा सा अरसा मुख्तसरन कुरान से पूरा कराते हैं। अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कीजिए। तो ये दर्द इस वक्त बहुत ज़रूरी है पैदा करना कि आज उम्मत मुस्लिमा के बच्चे, हमारे जवान, हमारी यंगस्टर्स और हम सब क्या सोच लेके जी रहे हैं। तो हज़रत उमर की ये दुआ कोई आम नहीं दुआ थी, अल्लाह ताला हमें इसी का मिस्ताक बना दे। तो ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे मेरी नस्लों को चुन, ज़िंदगी तेरे दीन के काम पर गुजरे और मौत तेरे दीन पर आए, ज़िंदगी इस्लाम पर हो और मौत ईमान पर आएगी, इंशाल्लाह खैर होगी।